भूमिका। रविंद्रनाथ उन साहित्य सृष्टाओं में हैं जिन्हें काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। केवल रचनाओं के परिमाण की दृष्टि से भी कम ही लेखक उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने 1000 से भी अधिक कविताओं की तथा 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की है। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक तथा धर्म, शिक्षा, राजनीति और साहित्य जैसे विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे हैं। एक शब्द में उनकी दृष्टि उन सभी विषयों की ओर गई है जिनमें मनुष्य की अभिरुचि है। रचनाओं के गुणगत मूल्यांकन की दृष्टि से वे उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां कुछ एक महान व्यक्ति ही पहुंचे हैं। जब हम उनकी रचनाओं के विशाल क्षेत्र और महत्व का स्मरण करते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं मालूम पड़ता कि उनके प्रशंसक उन्हें इतिहास में शायद सबसे बड़ा साहित्य सृष्टा मानते हैं। किसी प्रतिभावान महान व्यक्ति के आविर्भाव का कारण बतलाना कठिन है, क्योंकि वे साधारण के व्यतिक्रम ही होते हैं। साथ ही प्रतिभावान व्यक्ति की यह विशेषता भी होती है कि वे जाति के अवचेतन या अर्धचेतन मन को अनुप्रेरित करने वाले आवेगों और भावनाओं को रूप देते हैं। इस प्रकार अपनी जाति के साथ उनका एक संबंध स्थापित हो जाता है। इसी से यह बात समझी जा सकती है कि जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का आविर्भाव होता है तब लोग श्रद्धा और आश्चर्य से उसका अभिनंदन क्यों करते हैं। जनचित्त उसके शब्दों और कार्यों में अपनी उन भावनाओं और आशा आकांक्षाओं का मूर्त रूप पाता है, जिनके हल्के से स्पंदन का अनुभव तो उसने कर लिया है लेकिन जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर पाता है। प्रतिभावान व्यक्ति भी इस प्रकार के संबंध से लाभान्वित होते हैं। वे जाति के मस्तिष्क को अनुप्रेरित करने वाली अपरिपक्व भावनाओं और अस्पष्ट आशा आकांक्षाओं से शक्ति ग्रहण करते हैं। इन दोनों ही दृष्टियों से रविंद्रनाथ प्रतिभा के अनूठे उदाहरण हैं। उनकी असाधारणता के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन साथ ही जिन साधारण लोगों से उन्होंने प्यार किया था और जिनके लिए वे जिए थे उनके जीवन से भी उनका संबंध गहरा और घनिष्ठ था। अपने जन्म के स्थान और काल की दृष्टि से भी रविंद्रनाथ सौभाग्यशाली थे। उन दिनों पश्चिमी जातियों के आगमन ने भारतीय जीवन की शांत धारा में आलोड़न पैदा कर दिया था और समस्त देश में एक नए जागरण का संचार हो रहा था। इसके प्रारंभिक धक्के ने भारतीय मानस में चकाचौंध पैदा कर दी थी और इस काल के प्रारंभिक सुधारकों को पश्चिम का अंधा अनुयायी बना दिया था। रविंद्रनाथ का जन्म तब हुआ जब शुरू शुरू की यह अंधश्रद्धा खत्म हो रही थी, लेकिन पश्चिमी जातियों के लाए हुए आदर्श अब भी क्रियाशील और शक्तिशाली थे। साथ ही विरासत में पाए गए भारतीय मूल्यों के स्वीकार की प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। इसलिए यह काल एक ऐसी विशिष्ट प्रतिभा के आविर्भाव के लिए उपयुक्त था जो अपने में पूर्वी और पश्चिमी मूल्यों का समन्वय कर सके। केवल काल ही नहीं, स्थान भी उनके उपयुक्त था। संभवतः भारतवर्ष के अन्य भागों की अपेक्षा बंगाल ने इस धक्के का अधिक अनुभव किया था। बंगाल में भी जीवन के इस नए स्पंदन का प्रभाव सबसे ज्यादा कलकत्ता में ही दिख पड़ता है। रविंद्रनाथ की प्रतिभा के विकसित होने में उनका पारिवारिक वातावरण भी सहायक था। उनका परिवार भारतीय जागरण के अग्रदूतों में था। उसने प्राचीन विरासत को छोड़े बिना ही नए जमाने की इस चुनौती को स्वीकार किया था। ब्राह्मण होने के नाते रविंद्रनाथ के प्राचीन भारतीय परंपराओं को बड़े सहज और स्वाभाविक ढंग से अपना लिया। वे केवल साहित्य से ही नहीं बल्कि संस्कृति में पिरोए गए धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों से भी प्रभावित हुए। वे भूस्वामी वर्ग के थे, इसलिए मध्ययुगीन मुगल दरबार के मिश्र संस्कृति को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सके थे। इन दोनों बातों में वे संभवतः उन दिनों के अन्य ब्राह्मण जमींदारों से भिन्न नहीं थे, लेकिन वे उनमें से बहुतों के विपरीत आधुनिक जगत की नई धाराओं के प्रति भी सचेत थे। साथ ही साथ प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय परंपराओं से सराबोर उनका परिवार पाश्चात्य शिक्षा और जीवन प्रणाली के अग्रगणियों में भी था। रविंद्रनाथ की भारतीय विरासत अत्यंत समृद्ध थी और उनके मन में कोई व्यक्त या अव्यक्त द्विधा या द्वंद्व नहीं था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए तो इस बात को समझना मुश्किल न होगा। उनका समंजस व्यक्तित्व उस भेदभाव से मुक्त था जो उनके बहुतेरे समकालीनों की शक्ति का ह्रास कर रहा था। सचमुच रविंद्रनाथ इस विषय में भाग्यशाली थे कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय मूल्यों को छोड़े बिना ही उन्होंने नवीन की चुनौती स्वीकार कर ली। जो लोग अपने संस्कृति से विमुख हो चले थे और पश्चिम से प्राप्त प्रेरणा पर ही अधिक निर्भर रहने लगे थे, वे जातीय जीवन से उखड़ से गए। इसी से उनके प्रेरणाओं के स्रोतों में कमी हो गई और उनकी आध्यात्मिक पूंजी का ह्रास हो गया। यही कारण है कि उनमें से अनेक व्यक्ति प्रतिभाशाली और गुणज्ञ होने के बावजूद भारतीय जीवन और साहित्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव न डाल सके। प्रतिभावान महान व्यक्ति जाति की अंतरतम अनुप्रेरणाओं के साथ अपने आप को एक करके जो शक्ति प्राप्त करता है, उसका उन लोगों में अभाव था। एक और चीज भी थी जिससे रविंद्रनाथ को जनजीवन के साथ अपने आप को एक करने में सहायता मिली। जीवन के प्रारंभिक काल में वे पद्मा नदी के दियारों पर महीनों एक बजरे में रहे और इस प्रकार देश की ग्रामीण संस्कृति के बड़े निकट संपर्क में आए। देश के उस अंचल में जीवन की जो अनुभूति उन्हें हुई, उसका मूल देश के आदिम और प्राचीन इतिहास में था। मध्य युग में पनपने वाली यह संस्कृति नागरिक संस्कृति से कहीं अधिक गहराई तक लोगों के जीवन में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने एक ऐसे जगत में प्रवेश पाया जिसे शहर के लोग अपरिचित होते हैं। जातीय चेतना के कुछ गंभीरतम तलों में उनकी जड़ें जमी। साधारण लोगों के भरे पूरे जीवन का संस्पर्श ही उनकी अशेष सृजन शक्ति के मूल में है और यही कारण है कि उन्हें प्रेरणा शक्ति की कमी कभी नहीं हुई। रविंद्रनाथ के जीवन और उनकी रचनाओं पर विचार करते समय हम उनकी प्रतिभा की अद्भुत जीवन शक्ति से बार बार चकित हुए बिना नहीं रह सकते। वे प्रमुख रूप से कवि थे, लेकिन उनकी दिलचस्पियां कविता तक ही सीमित नहीं थी। साहित्य के विविध क्षेत्रों में उनकी देन का संकेत हम पहले ही कर चुके हैं। साहित्य को यदि हम व्यापकतम अर्थ में भी लें तो भी हम पाते हैं कि यह क्षेत्र उनकी समस्त उद्दामता को नहीं समेट सकता। वे संगीतज्ञ भी थे तथा बहुत बड़े चित्रशिल्पी भी। इसके अलावा धर्म और शिक्षा संबंधी तत्व चिंतन, राजनीति और सामाजिक सुधार, नैतिक उत्थान और आर्थिक पुनर्निर्माण के क्षेत्रों में भी उनकी देन बड़े महत्व की है। वस्तुतः इन क्षेत्रों में उनका कार्य इतने महत्व का है कि वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिने जा सकते हैं। जीवन को पूर्ण और अविभाज्य इकाई मानने में ही रविंद्रनाथ की शक्ति निहित है। आदर्शों अथवा संस्कृतियों के द्वंद्व या विखंडन ने उनकी शक्ति को कभी विभाजित नहीं किया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कला और जीवन को अलग अलग नहीं माना। 19वीं शताब्दी के अंत में सौंदर्य शास्त्र के एक नए सिद्धांत ने यूरोप पर आधिपत्य जमा लिया था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि कला के उद्देश्य से कला को अपनाना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं कि जीवन से उसका संबंध हो ही। हवाई महल या गजदंत मीनारे ही कलात्मक प्रयासों के प्रतीक और नमूने बन गई थी। इस सिद्धांत के पुजारी कहने लगे थे कि कवि और कलाकार सर्वप्रथम स्वप्नचारी होते हैं। रविंद्रनाथ ने इस मत को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि कला जीवन से विच्छिन्न है। उन्होंने सौंदर्य को ढूंढा तो अवश्य, लेकिन जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में। साथ ही उनका यह भी विश्वास था कि जीवन में तब तक माधुर्य नहीं आता जब तक वह सौंदर्य से स्निग्ध न हो जाए। रविंद्रनाथ की दृष्टि में कवि धर्म ही मानव धर्म है। रविंद्रनाथ संसार के श्रेष्ठतम गीत कवियों में गिने जाते हैं। संवेदनाओं की सच्चाई और भावचित्रों की सजीवता उनके पदों के संगीत से मिलकर एक ऐसे काव्य की सृष्टि करती है कि शब्दों के भूल जाने पर भी पद संगीत पाठक के मन को विभोर किए रहता है। संवेदना, भावचित्र और संगीत का इस प्रकार से घुल मिल जाना उनके प्रारंभिक जीवन से ही दिख पड़ने लगता है। निर्झरेर स्वप्नभंग की रचना उस समय हुई थी जब वे 20 वर्ष के भी न थे, लेकिन वह आज भी बांग्ला की और यदि सच पूछा जाए तो किसी भी भाषा के श्रेष्ठतम गीतियों में है। यह कविता केवल अपने संगीत और तीव्रता के कारण ही विशिष्ट नहीं है, बल्कि अपने भावचित्रों की सबलता के कारण भी। और शायद इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि इसमें प्रकृति और मनुष्य को एकता के ऐसे योग सूत्र में बांधा गया है जो कभी टूटने वाला नहीं। प्रकृति और मनुष्य का यह सायुज्य रविंद्रनाथ के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता रहा है और यह बात उनमें आजीवन बनी रही। धरती को इतने प्राणपण से प्यार करने वाला दूसरा कवि शायद कभी नहीं हुआ। रात दिन अथवा ऋतु चक्र के शायद ही कोई भावभंगी ऐसी होगी जिसका गान रविंद्रनाथ ने अपनी कविता में न गाया हो। उनके काव्य के जादू ने बंगाल के दृश्य रूपों की छवि और उसकी ध्वनियों के दृश्यों को बारंबार अपने भीतर उतार उतार लिया है। कालिदास के जमाने से ही भारतीय कवियों ने वर्षा ऋतु का गुणगान अपरोल्लास के साथ किया है। अपने सैकड़ों गीतों और कविताओं में रविंद्रनाथ ने वर्षा के बदलते रूपों का चित्रण किया है। वास्तव में वर्षा ऋतु संबंधी उनके गीत और उनकी कविताएं हमारे जातीय विकास का एक अंग हो गए हैं। वर्षा के आगमन के ठीक पहले झुलसी हुई धरती की प्रतीक्षा, पहले पहल के दौगड़े के बाद भीगी मिट्टी से उठती सोधी सोधी गंध, नई नई उगी घास के हरे अंकुरों में प्राणों का स्पंदन, काले काले बादल जो प्रातःकालीन स्वच्छ प्रकाश को धुंधला कर देते हैं तथा सायंकालीन छाया में जादू भर देते हैं, रात्रि की स्तब्धता में पड़ती वर्षा का विराम टप टप, ये तथा सैकड़ों अन्य चित्र रविंद्रनाथ के मुग्धकारी काव्य में प्राणमान हो उठते हैं। उनमें उन्होंने मानव हृदय के सुख दुख का ताना बाना बुन दिया है। यहाँ तक कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे की मनोदशा को प्रतिबिंबित करने लगते हैं और उनका पार्थक्य ओझल हो जाता है। रविंद्रनाथ ने दूसरी ऋतुओं को भी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। शरद और वसंत के भिन्न भिन्न भावों का चित्रण उन्होंने किया है। नवबसंत का उद्दाम उन्माद, शिशिर ऋतु का बंधनों से मुक्त होने का भाव, क्षिप्र गति से फूट फूट उठते रंग और ध्वनियाँ आदि उनकी बहुत सी कविताओं और गीतों में प्रतिबिंबित हैं। उनमें केवल वसंत का आनंद और शक्तिमत्ता ही नहीं बल्कि उसकी अनित्यता और क्षणभंगुरता के भाव भी प्रतिफलित हुए हैं। पूर्णता और परिपक्वता के भाव लिए शरद का मेघ धुला आकाश रविंद्रनाथ की बहुत सी कविताओं में विशेष रूप से प्रकट हुआ है। उनकी एक अत्यंत सफल गीत नाट्य की रचना शरद को लेकर ही हुई है, जिसमें कार्य संकुलता के बोझ से मुक्ति पाने का भाव है। शीत और ग्रीष्मकाल को भी उन्होंने नहीं भुलाया। अपनी एक सुप्रसिद्ध कविता में रविंद्रनाथ ने ग्रीष्म को एक ऐसा कठोर तपस्वी माना है जो सांस रोके नवजीवन के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहा है। केवल प्रकृति सौंदर्य ने ही रविंद्रनाथ को धरती से इतने अटूट संबंधन में नहीं बांधा। उन्होंने धरती को इसलिए भी प्यार किया कि वह मनुष्य की वास स्थली है। अनगिनत कविताओं और गीतों में उन्होंने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को उड़ेला है। मनुष्य के हृदय की शायद ही कोई ऐसी संवेदना हो जिसने उनके हृदय को स्पंदित न किया हो। सुख दुख से भरे मानव की गहन प्रेम लीला की हजारों अभिव्यक्तियां कुछ ऐसे शब्दों में समायोजित हो गई हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नैराश्य, मन की व्यथा तथा निष्फल प्रतीक्षा की असह्य पीड़ा का सजीव चित्रण पाठक को विस्मय में डाल देता है। उन्होंने प्रकृति को मनुष्य के भाव आवेगों के चिरंतन साथी के रूप में भी चित्रित किया है। वे जानते थे कि जीवन नाना संघर्षों और प्रचेष्टाओं से भरा हुआ है और यह संसार त्रुटियों से रहित नहीं है, लेकिन उनका विश्वास यह भी था कि त्रुटियां, दोषों, क्लेशों और लालसाओं के कारण हमारा यह सांसारिक जीवन मनुष्य के लिए और भी प्रिय हो उठता है। रविंद्रनाथ ने संसार को केवल ऐसा रंगमंच ही नहीं माना जहाँ मनुष्य जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है, बल्कि उसे स्नेहमयी माँ के रूप में भी देखा है, जो जीवन की विविध अनुभवों में सारगर्भित अर्थ खोजने की साधना में लगे मनुष्य की निगरानी करती रहती है। रविंद्रनाथ कोई सन्यासी न थे और न वे कोई सुख विलासी या इंद्रिय सर्वस्ववादी ही थे। उन्होंने एक ओर तो उस आदर्श का जानबूझकर प्रत्याख्यान किया जो शरीर धर्मों और नानाविध भोगों को अस्वीकार करता है, दूसरी ओर उन्होंने केवल इंद्रिय सुख या केवल भोग लिप्सा को ही सब कुछ कभी नहीं माना। वे जीवन के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की साधना में सतत लगे रहने को ही जीवन का वास्तविक गौरव मानते थे। जीवन की परिपूर्णता पाने की यह आकांक्षा उनकी कविताओं में बार बार प्रकट हुई है। वसुंधरा नामक उनकी कविता में उन्होंने पृथ्वी के भरे पूरे जीवन और सृष्टि की आदिम शक्ति के उफनते ज्वार के साथ मनुष्य के अंतरंग संबंध का गीत गाया है। अपनी एक सुप्रसिद्ध गीत स्वर्ग हाइते विदाय, स्वर्ग से विदाई में उन्होंने उच्छ्वास रहित शांत स्वर्ग सुख के साथ सांसारिक जीवन के अजस्र सुख दुख के ज्वार भाटों की तुलना की है। रविंद्रनाथ ने हमें किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहने दिया है कि वे किस जीवन को अधिक पसंद करते हैं। रविंद्रनाथ मुख्यतः गीतकार ही हैं, लेकिन उनके प्रकृति प्रेम और जीवन के वैविध्य के साथ उनकी अंतरंगता ने उनकी बहुत सी कविताओं में एक सुसमृद्ध नाट्य गुण ला दिया है। रविंद्रनाथ के गंभीर मानव धर्म और न्याय के लिए उनकी आकुलता को देखते हुए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि वे सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों की ओर भी आकृष्ट हुए। किसी प्रकार का कोई विशेष अनुभव भले ही सामायिक क्यों न रहा हो, लेकिन जिसको भी उन्होंने छू दिया है वह एक ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया है और सार्वभौम हो गया है। अपने ही लोगों के पूर्वग्रहों और कुसंस्कारों के खिलाफ उन्होंने कुछ एक कटु व्यंगों की भी रचना की है, लेकिन उन रचनाओं में शायद ही कोई ऐसी हो जिसमें उनके भीतर की मानवता उनके रोष और क्रोध के स्तर से ऊपर न उठ गई हो। यहाँ तक कि उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी समग्र मानव जाति की भावना से अनुप्रेरित हैं। रविंद्रनाथ के लिए देश प्रेम एक सहज गुण था, इसमें अपने देश और देशवासियों के लिए प्रेम तो था लेकिन दूसरे देश वालों के प्रति घृणा या हिंसा भाव नहीं था, और इस प्रकार वह देश प्रेम कभी नकारात्मक नहीं था। इसका एक अत्यंत सुंदर उदाहरण उनकी कविता गुरु गोविंद में मिलता है। इसमें अपने देश तथा देशवासियों के लिए उनका गंभीर प्रेम समग्र मानव जाति के प्रति प्रेम की गहराई में उतर आता है। रविंद्रनाथ ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि जिसमें मानवीय तत्व है वह कभी भी उनके लिए विदेशी हो सकता है। अपनी सुप्रसिद्ध कविता प्रवासी में उन्होंने कहा है कि सभी जगह मेरा घर है और संसार के सभी हिस्से में मेरा देश। समग्र मानव जाति के साथ एकात्मबोध का यह भाव हमारे राष्ट्रीय गीत में बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। इसमें रविंद्रनाथ ने भारत भाग्य विधाता के रूप में समस्त संसार के जनगणमन अधिनायक का आह्वान किया है। मनुष्य के प्रति रविंद्रनाथ का यह प्रेम अनजाने तथा अपरिहार्य रूप से भगवान के प्रति प्रेम का रूप ले लेता है। हम यह देख चुके हैं कि उनकी कल्पना में जीवन की अभिरुचि का जो विकास हुआ है उसमें प्रकृति और मानव एकाकार हो गए हैं। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि भगवान मनुष्य के जीवन से दूर और अलग कोई वस्तु है जिनके प्रति भगवान प्रेम ही भगवान था। संतान के प्रति माता का वात्सल्य अथवा प्रेमिका के प्रति प्रेमी का प्रेम उस महत प्रेम के उदाहरण मात्र हैं और यह प्रेम ही परमात्मा है। और यह प्रेम केवल रहस्यवादी भाव विवलता में ही नहीं बल्कि साधारण मनुष्य की नित्य प्रति की जीवन यात्रा में भी प्रकट होता है। रविंद्रनाथ ने बार बार कहा है कि भगवान को जीवन के सहज साधारण संबंधों में और नित्य प्रति की उस कार्यावली में प्रत्यक्ष करना चाहिए जिस पर संसार टिका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रविंद्रनाथ वैष्णव काव्य और सूफी रहस्यवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कविता और उनके गीत ऐसे भावचित्रों से भरे हैं तथा उनका वक्तव्य विषय कुछ इस प्रकार है कि हमें रहस्यवादियों के भाव लास की याद आ जाती है, लेकिन साथ ही उसमें दिन प्रतिदिन की जीवन यात्रा की वास्तविकताओं के प्रति भी एक तीव्र जागरूकता है। उनके शब्दों और वाक्यांशों में रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ी ऐसी यथार्थता है जो व्यक्तिगत अनुभव के बिना संभव नहीं। संवेदना के चित्रण की बारीकियां प्रकृति के भिन्न भिन्न भाव रूपों से इस प्रकार घुल मिल गई हैं कि संसार के काव्य साहित्य में ऐसा चित्रण कम ही देखने को मिलता है। उनके रहस्यवादी काव्य की विशेषता की कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए। जब पहले पहल गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ तब युद्ध से जर्जर और तिक्त संसार में प्रेम और शांति के इस संदेश के लिए पश्चिमी देशों में इनका खूब जोरों से स्वागत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस लघुकाय संस्करण की कविताएं एक गंभीर शांति की भावना से ओतप्रोत हैं। इस पुस्तक में संकलित रविंद्रनाथ की कविता के जो विषय हैं वे हमारी दैनंदिनी अभिज्ञता से ही लिए गए हैं। उनकी भाषा बोलचाल की है और भावचित्र सरल हैं, फिर भी उनमें सौंदर्य और सुदूर के इंगित का एक ऐसा गुण निहित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यूरोप तथा अमेरिका के पाठकों के लिए ये कविताएं आश्चर्य मिश्रित हर्ष उत्पन्न करने वाले एक नए आविष्कार सी थी। लेकिन रविंद्रनाथ की कविताओं को मूल बांग्ला में पढ़ने वाले पाठकों के लिए ये कविताएं उनकी प्रारंभिक रचनाओं की स्वाभाविक परिणति मात्र थी। प्रकृति और मनुष्य के प्रति उनका प्रेम अनजाने ही भगवान के प्रति उनके प्रेम में विलीन हो गया था। उनके निजी जीवन की गंभीर व्यथा ने उनके भावचित्रों और वक्तव्य विषय को अत्यंत मधुर और गहन बना दिया था। उनके अनुभव के विकास क्रम ने उन पर हर द्विधा रहित सत्य प्रकट कर दिया था कि जीवन मात्र रहस्य से आवेष्टित है। मनुष्य जीवन की करुणा और विस्मय ने उनकी रचनाओं में एक नई सहानुभूति और कर्म स्पर्शिता ला दी थी। रविंद्रनाथ के अंतिम दिनों की बहुत सी गीतियों की विशेषता यह रही है कि वे अत्यंत सहज सरल हैं। प्रारंभिक काल में की उनकी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत के बहुत से प्रसंगों और ध्वनि साम्यों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। बहुत सी कविताओं में प्राचीन भारतीय साहित्य की वस्तु योजना और भावभंगी का समावेश हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने पुराने को नए साँचे में ढाला है, लेकिन फिर भी यह समझने में भूल नहीं हो सकती कि सुसमृद्ध भारतीय पुराण साहित्य से उनका गहरा संबंध है। पर मनुष्य और परमात्मा के प्रति निवेदित उनकी कविताओं में उन्होंने सभी प्रकार के अलंकरण का परित्याग कर दिया है। उन्होंने सत्य की अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य की साधारण से साधारण परिस्थिति का भी उपयोग किया है। उनकी भाषा भी सर्वसाधारण की भाषा जैसी सहज सरल और स्पष्ट हो गई है। बाद के उन बहुत से गीत काव्यों और गीतों में हम अनुभूति के सामिप्य का साक्षात्कार अनुभव करते हैं। इनमें शब्द बिल्कुल पारदर्शी और स्वच्छ हो गए हैं। विशुद्ध संगीत की ध्वनियों जैसी उनमें ऐसी सबलता और स्पष्टता आ गई है जिससे हम बहुधा अवाक रह जाते हैं। हम यह भी नहीं भूल सकते कि रविंद्रनाथ अपने समस्त जीवन में सत्य के निर्भीक और सच्चे खोजी रहे। हम अपने दैन्य को छिपाने के लिए प्रवंचना और पाखंड के जिस बाह्य दिखावटी स्वरूप का निर्माण करते हैं, उनकी बुद्धि के तेज ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। जिन्होंने उन्हें मूल में नहीं पढ़ा है, वे उनकी रचनाओं की ऊर्जस्विता और शौर्य से बहुत कुछ अपरिचित ही हैं। इसका एक कारण यह है कि अनुवाद के लिए कुछ चुनी हुई कवि रचनाएँ ही ली गई हैं और उनमें से कुछ ऐसी कविताएँ छांट दी गई हैं जिनसे रविंद्रनाथ की बुद्धि के पैनेपन और प्रसार का पता चल पाता। दूसरा कारण यह है कि बहुत से अनुवाद छाया मात्र हैं, उनमें मूल की खुरदुरी और दुर्दम शक्तिमत्ता प्राय खो सी गई है। मनुष्य तथा उसके नियति के प्रति रविंद्रनाथ की दिलचस्पी उनके जीवन के प्रारंभिक काल से ही दिखने लगती है। उनके शुरू शुरू के काव्य संग्रहों में एक संध्या संगीत में भी हम उन्हें मानव के अस्तित्व की समस्या से उलझते पाते हैं। मनुष्य का स्वार्थ जब प्रेम का बाना पहन लेता है तो उससे एक असुंदरता सी उत्पन्न होती है। अल्पवयस्क तरुण होते हुए भी रविंद्रनाथ ने इस असुंदरता का वर्णन किया है। नैवेद्य तक आते आते उनमें यह दार्शनिक पुट गंभीर और गहन हो उठा है, लेकिन बौद्धिकता और भावावेग के समन्वय का सुंदरतम रूप हम शायद बलाका में ही पाते हैं। बलाका की कुछ कविताएं विचार और संवेदना के समन्वय को प्रकाश में लाती हैं और इस समन्वय के फलस्वरूप दर्शन शास्त्र के सिद्धांत विशुद्ध गीत काव्य का रूप ले लेते हैं। रविंद्रनाथ अपने जीवन के प्राय अंतिम दिनों तक नई अनुभूतियों और नई अभिव्यक्तियों के लिए सतत प्रयासी रहे। जीवन के 60वें साल के बाद तो उनकी गीत रचनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई थी और विरचनाएं उनकी युवावस्था के प्रारंभिक काल की उत्कृष्ट रचनाओं तक से होड़ ले सकती हैं। इस काल की कविताओं में गंभीर संवेदना और भावावेग का एक नया स्वर है जो दुख में तप कर विशुद्ध हो चुका है। इस दशक में उनके व्यक्तित्व के जो घनिष्ठ स्वर और निजत्व भाव मिलते हैं, उनका स्थान अगले दशक में एक गहन एवं गंभीर मानव धर्म ने ले लिया है। उनकी पहले की रचनाओं में भाव और भाषा का जो प्राचुर्य था, उसके स्थान पर अब भाव और भाषा की एक अपूर्व मितव्ययिता देखने को मिलती है। उनकी कुछ अंतिम कविताओं में सामर्थ्य और आत्मविश्वास का ऐसा भाव है जिसका बुद्धि तेज हमें चकित कर देता है। इसके अलावा उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य के संबंध में नए सिरे से कुछ प्रश्न भी उठाए हैं और साथ ही जीवन को बड़े शांत और स्निग्ध भाव से उसकी सभी न्यूनताओं और संभावनाओं के साथ स्वीकार किया है। रविंद्रनाथ ने 1000 से अधिक कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। वे मुश्किल से 15 वर्ष के रहे होंगे जब उनकी प्रथम पुस्तक प्रकाश में आई और उनकी अंतिम कविता उनकी मृत्यु से ठीक पहले ही लिखी हुई है। इस बात से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं में से कोई चयन तैयार करना इतना कठिन क्यों है। वास्तव में साहित्यिक रचनाओं का संग्रह तैयार करना सदैव मुश्किल होता है। प्रत्येक संग्रह संकलनकर्ता के अपने विचार और रुचि के ही अनुसार होता है और ऐसी आशा कोई नहीं कर सकता कि उसकी पसंद सबको संतुष्ट करेगी। यही कारण है कि कोई भी संग्रह में पूरा संतोष नहीं दे पाता। अगर गद्य के लिए यह बात सत्य है तो काव्य के लिए तो यह और भी अधिक सत्य है। भिन्न भिन्न पाठकों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा किसी कविता का आवेदन पाठक के अपने निजी अनुभव तथा मनोदशा पर भी निर्भर करता है। एक ही कविता अगर एक पाठक के हृदय को छू लेती है तो दूसरे पाठक को बिल्कुल निरुत्साहित छोड़ देती है। यहाँ तक कि एक ही पाठक भिन्न भिन्न काल में तथा मन की भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग ढंग से प्रभावित होता है। चुनाव चाहे कितने भी बुद्धिमत्ता से क्यों न किया गया हो और संकलनकर्ता कितना ही विवेकशील क्यों न हो, यह असंभव सा ही है कि कोई ऐसा संग्रह निकले जो सर्वदा सभी पाठकों को संतुष्ट कर सके। रविन्द्रनाथ की रचनाओं का परिमाण, विस्तार और वैचित्र्य एक ओर तो चुनाव के काम को कठिन बना देता है, दूसरी ओर चुनाव को और भी आवश्यक बना देता है। महान से महान कवि भी सर्वदा अंतःप्रेरणा के शिखर पर ही नहीं रह सकता, समय समय पर उसे भी भार मुक्त होना पड़ता है और कभी कभी तो उसे घाटी में भी उतर आना पड़ता है। औसत पाठक को न तो समय मिलता है और न उसमें वैसी प्रवृत्ति ही होती है कि वह महान साहित्यकार की सभी रचनाओं को पढ़ने का कष्ट उठाकर उसी सर्वोत्कृष्ट कृति को खोज निकाले और उसका आनंद ले। विदेशी पाठकों के बीच रविन्द्रनाथ की ख्याति को कुछ धक्का लगा है, क्योंकि मुख्य रूप से उनके सामने उनकी रचनाओं का एक ही पहलू रखा गया है और यह बात भी नहीं है कि वह उनका सबसे महत्व और एक सबसे श्रेष्ठ पहलू हो। यह बात केवल विदेशी पाठकों पर ही लागू नहीं होती बल्कि बंगाल के बाहर के भारतीय पाठकों पर भी लागू होती है। दो अर्थों में यह एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। एक तो इस अर्थ में कि भारतवर्ष के बहुसंख्यक लोग भारतवर्ष के सबसे बड़े कवि की कुछ सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से अब तक अपरिचित हैं, और दूसरे इस अर्थ में कि भारतवर्ष की दृष्टि का प्रसार कहाँ तक है इसे समझने और जानने के अवसर बाहर की दुनिया को नहीं मिला। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए रविन्द्रनाथ की रचनाओं का एक नया संग्रह प्रस्तुत किया जाए। साहित्य अकादमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यह रविन्द्रनाथ की चुनी हुई कविताओं, गीतों, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों और निबंधों के 8 अलग अलग संग्रह निकाले जा रहे हैं। सभी भारतीय भाषाओं के पाठकों को रविन्द्रनाथ की प्रतिभा के शौर्य, सूक्ष्मता और विस्तार का ज्ञान करा देना उनका पहला ध्येय होगा। उनका एक और अतिरिक्त ध्येय होगा कि वे संसार के दूसरे देशों के पाठकों को भी वही उपहार भेंट करेंगे। 101 कविताओं का यह संग्रह प्रस्तावित संकलनों का पहला खंड है। यह कविताएं पहले तो देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित की जा चुकी हैं और अब भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हो रही हैं, और उसके बाद ये संसार के प्रमुख भाषाओं में भी अनुदित हो सकती है। उत्तर भारत की सभी भाषाओं में एक ऐसा निकट का संबंध है कि जो पाठक बांग्ला नहीं जानते वे भी अगर मूल कविता को पढ़ सकें तो उसे समझ सकते हैं। यह निकट का संबंध केवल भाषा में ही नहीं बल्कि समान परंपरा, समान सहानुभूति, समान कथा प्रसंग से उत्पन्न भावावेगों और मनोभावों में भी है। दक्षिण भारत की भाषाओं से अलबत्ता मौखिक रूप से निसंदेह बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आवेग, अनुभूति और परंपरा के क्षेत्र में दोनों का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। अनुवादों की सहायता से प्रायः सभी भारतीय भाषाओं के पाठक देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित रविन्द्रनाथ की मौलिक रचनाओं के सौंदर्य और अभिव्यंजना को ठीक ठीक परखने में समर्थ हो सकेंगे। बाद में जब इन कविताओं का अनुवाद संसार की अन्य भाषाओं में होगा तब ऐसी आशा की जा सकती है कि अब तक के संग्रहों और अनुवादों की अपेक्षा वे अधिक प्रतिध्वनि मूलक होंगी और रविन्द्रनाथ को कुछ अधिक समझने में सहायक सिद्ध होंगे। 101 की संख्या कोई खास पवित्र नहीं है। अगर कोई पाठक कहे कि यह संख्या दुगुनी कर दी जाए तो भी इसमें केवल उत्कृष्ट रचनाएं ही रहेंगी तो कम से कम मैं उस वक्तव्य को गलत नहीं मानूंगा, और मैं इस आक्षेप को भी स्वीकार कर लूंगा कि इस संग्रह में कुछ ऐसी कविताएं छूट गई हैं जो संग्रह की कविताओं से बढ़कर नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो हैं ही। इसमें मतभेद की गुंजाइश बराबर बनी रहेगी कि किसी महान कवि की कौन कौन सी 100 या 200 कविताएं उत्कृष्ट हैं। वैसे इस संग्रह के बारे में तो मैं 2 बातों का दावा अवश्य करूँगा। इसमें ऐसी कोई भी कविता नहीं है जो प्रथम कोटि की न हो, और यह भी कि संग्रह प्रतिनिधि मूलक है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि रविन्द्रनाथ की भिन्न भिन्न शैलियों और मनोदशाओं का परिचय देने वाली कुछ कविताएं नमूने के तौर पर आ जाएं। लेकिन एक बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि इस संग्रह से गीत जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रविन्द्रनाथ के संगीत पर गीतों में उनका कुछ उत्कृष्ट काव्य भी है, लेकिन गीतों का एक संग्रह अलग से निकालने की योजना है, इसलिए इस संग्रह में उन्हें छोड़ देना ही ठीक समझा गया है। इस संग्रह का प्रारंभ निर्झरीय स्वप्न भंग से हुआ है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रविन्द्रनाथ ने इस कविता को ही अपनी काव्य प्रतिभा का जागरण माना था। इसमें गीति काव्य का जो सुर है उसे रविन्द्रनाथ के लंबे कवि जीवन में बार बार आमंत्रित किया गया है। कभी कभी यह सुर रहस्यात्मक उत्कंठा और तीव्र इच्छा से रंग गया है, जैसा कि हम सोनारतरी अथवा निरुद्देश यात्रा में देखते हैं। कभी कभी यह सुर गंभीर मानवीय आंतरिकता और अभिप्राय से ओतप्रोत होता है, जैसे जेते नाही दीप वसुंधरा अथवा भारत तीर्थ में। कभी कभी संगीत ही प्रधान उठा है और उस समय आंतरिकता और बौद्धिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जैसे उर्वशी छवि अथवा चंचला में। इस समन्वय का एक अत्यंत उत्कृष्ट नमूना प्रहर शेषेर आलोय रांगा शीर्षक अंश में मिलता है। रविंद्रनाथ की दृष्टि में मनुष्य का सबसे बड़ा कृतित्व इस बात में है कि वह अपने निजी व्यथा और संसार की विकराल वेदना पर विजय प्राप्त करे। स्वार्थपरता के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों और वैयक्तिक कलहों पर मनुष्य जय लाभ करता है। वह उस गंभीर वेदना से भी ऊपर उठता है जो जीवन की क्षण भंगुरता का अनिवार्य परिणाम। विदाय अभिशाप में कच्छ जब देवयानी के शाप के बदले उसे वरदान देता है, उसके मंगल कामना करता है, तो वह सचमुच में मनुष्य हो उठता है। ब्राह्मण में गुरु ने पाया कि मनुष्य का महत्व वंश गौरव में नहीं बल्कि इस बात में है कि बिना किसी दुराव के बिना किसी अंतर की दुविधा के वह सत्य को स्वीकार करता है। जेतना ही देवियों में कवि ने इस बात को समझा कि कभी कभी एक छोटा बच्चा भी मानव प्रकृति के सहज सत्य को प्रकट कर सकता है, जबकि समझदारी का भान करने वाले नर नारी इसमें असफल हो सकते हैं। गांधारीर आवेदन अथवा कर्णकुंती संवाद में स्नेह आकांक्षा अथवा भय के ऊपर मनुष्य के गौरव की विजय की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मानवीय संबंधों के सौंदर्य तथा करुण भाव को हम उनकी शिशु संबंधी कविता माला में पाते हैं जो जन्म कथा से प्रारंभ होती है। रविंद्रनाथ ने प्रायः परंपरा भुक्त प्रसंगों और विषयों को लिया है। भारतीय प्राचीन साहित्य का उनका उपजीव्य रहा है। वैसे तो उन्होंने जिस चीज का भी स्पर्श किया है उसे रूपांतर ला दिया है। कालिदास के प्रति रविंद्रनाथ की अत्यधिक श्रद्धा थी और उनसे वे विमुग्ध होते रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उनसे भी कोई प्रसंग या विषय ग्रहण किया तो उसको इस ढंग से मोड़ा कि उनकी अपनी रचना प्रधान रूप से आधुनिक हो गई है। रविंद्रनाथ के लिए मेघदूत किसी पौराणिक पक्षी या यक्ष का अपनी प्रिया को भेजा हुआ संदेश नहीं बल्कि प्रत्येक युग और स्थान के सभी प्रेमियों की तीव्र उत्कंठा की अभिव्यंजना है। अहल्यार प्रति भग्न दष्ट लग्न तथा स्वप्न में एक लुप्त हो चुके अतीत के वातावरण को उन्होंने फिर से लौटाया है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि अतीत फिर से हम लोगों के आज के आवेगों और मनोदशाओं में ही बस रहा है। अतीत और वर्तमान तथा पुराण और अनुभव के संबंध को जितने कौशल से मदन भस्मेर पर जैसी कविताओं में प्रतिष्ठित किया गया है वह शायद ही कहीं देखने को मिले। अतीत की परंपराओं को फिर से लाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति उनकी अंतिम कविताओं में देखने को नहीं मिलती। तपोभंग में एक प्राचीन पौराणिक कथा की एक अत्यंत ही मार्मिक व्याख्या की गई है और ऐसे सुंदर रूप दिया गया है। इस कविता में संन्यास के ऊपर नूतन जीवन के उफान की अंतिम विजय की घोषणा की गई है। रविंद्रनाथ ने केवल विषय और प्रसंग को लेकर ही प्रयोग नहीं किए बल्कि काव्य के रूप विधान को लेकर भी किए हैं। अपने पूर्ववर्तियों के प्रभाव से भी कभी आतंकित नहीं हुए। बांग्ला के परंपरा भुक्त वैष्णव काल से उन्होंने बिना संकोच लिया है और स्वयं ही बिहारी लाल जैसे बंगाली कवियों का आभार माना है। अपने परिवेश अथवा युग से कोई अछूता नहीं रह सकता। इस तरह के प्रयास कम ही सफल हो पाते हैं और वास्तव में ऐसा प्रयास साधारणतः कवि में आत्मविश्वास के अभाव का लक्षण मात्र है। रविंद्रनाथ का विकास अपने समसामयिक समाज के प्रभाव में हुआ, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में ने ही उन्हें ऐसा समर्थ बना दिया है कि समय पाकर वे इन सबसे ऊपर उठ सके। एक बार माध्यम के संबंध में निश्चय कर लेने के बाद अपनी कविता के वक्तव्य विषय और रूप विधान दोनों में ही वे प्रयोग करने में हिचकते नहीं थे और उन अनुभव क्षेत्रों से प्रेरणा ग्रहण करते थे जिनकी ओर पहले बांग्ला काव्य में ध्यान नहीं दिया गया था। सच तो यह है कि उन्होंने इस विवाद को बहुत दूर तक खत्म ही कर दिया कि कविता का विषय क्या है और क्या नहीं है। क्षणिका में हम उन्हें प्रसंग का चुनाव करते हुए देखते हैं जिसमें प्रथम दृष्टि में किसी भी प्रकार की काव्यगत संभावना नहीं दिख पड़ती, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे उसे सामान्य धरातल से ऊपर उठा देते हैं और सौंदर्य के प्रकाश से उसे प्रकाश में बना देते हैं। वर्षवत का यह दावा कि गंभीरतम अनुभूति को सहज ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है और दैनंदिन जीवन की वास्तविकताओं को रहस्य के आलोक से आलोकित किया जा सकता है रविंद्रनाथ की उस काल की बहुत सी कविताओं द्वारा समर्थित हो जाता है। हास्य और रुदन विनोद और आवेग कुल मिलकर अभिलाषा उत्कंठा और तीव्र उपहास का अपरूप संयोग संपन्न कर देते हैं। कृष्णकली, यथास्थान और सेकाल आदि कविताओं में मनुष्य के चित्त वृत्ति आवेग और संवेदना का आश्चर्यजनक पारस्परिक घात प्रतिघात देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ की प्रतिभा प्रधान रूप से गीति काव्यात्मक थी, लेकिन कभी कभी हम उसमें समाज की बुराइयों के विरुद्ध अगर कटोक्ति नहीं तो व्याजोक्ति का तीव्र स्तर अवश्य पाते हैं। वे जानते थे कि प्रचलित धारणा के अनुसार आध्यात्मिकता के संबंध में जो भारतीय दावा है वह बहुत तो विचार करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अपनी कविता हिंटी छट में रविंद्रनाथ ने निर्मम होकर गंभीरता से उस घटाटोप की छिन्न भिन्न कर दिया है जो बहुधा एक खाली दिमाग को छिपाए रहता है। द्विपाक्षी में उन्होंने उन निष्प्राण परंपराओं और अर्थहीन आधारों की खिल्ली उड़ाई है जिन्होंने जीवन को जटिल कर रखा है। देवतार ग्रास में उन्होंने बद्धभूल धारणा और धर्म मनुष्य के धर्म के बीच होने वाले संघर्ष का चित्रण किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार बाह्याचार के ऊपर सत्य की अंतिम विजय होती है। बाह्याचारों ने मनुष्य सत्य को खो देता है। अपमानित और धूल मंदिर में हम मनुष्य की अवमानना के विरुद्ध घृणा और रोष का अंतर पाते हैं। जीविका निर्वाह के लिए लड़ाई अपनाई गई वृत्ति के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानने को भी कदापि तैयार न थे। कुछ आलोचक या आपत्ति उठा सकते हैं कि इस संग्रह में उनके उत्तरकालीन जीवन की कविताएं अधिक हैं। इस अभियोग में शायद कुछ तथ्य भी है, क्योंकि इस संग्रह में सन 1928 ईस्वी से सन 1941 ईस्वी तक की 20 से अधिक कविताएं हैं और 1882 से सन 1924 ईस्वी तक की केवल 80 कविताएं ही ली गई। इसका एक कारण यह भी है कि अभी तक के मूल बांग्ला के संग्रह में अथवा दूसरी भाषाओं के अनुवादों में प्रारंभिक काल की रचनाओं का तो आमतौर पर बहुत कुछ बेहतर और अधिकतर समावेश हो चुका है। उत्तरकालीन रचनाओं से कुछ कम चुनाव करने का दूसरा कारण यह है कि उस काल की कविताओं में विचार और अभिव्यंजना की दृष्टि से अधिक संयम से काम लिया गया है। तकनीक की श्रेष्ठता और विचारों की गहनता में मिलकर इस काल की कविताओं को अधिक गंभीर और मार्मिक बना दिया है। अपनी युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में रविंद्रनाथ ने प्रेम संबंधी बहुत सी सुंदर कविताएं लिखी हैं, लेकिन वे जीवन के ऊपरी तल को भी छूने वाली लगती हैं तथा उस गहराई तक नहीं जाती जहां मनोरोग की आग जल रही होती है। समय समय पर आलोचकों ने कहा है कि प्रेम की अनुभूति की अपेक्षा वे शब्दों और अभिव्यक्ति के ढंग पर अधिक ध्यान देते रहे, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे रात्रे ओ प्रभाते अथवा स्वर्ग हैते विदाय की तीव्र लालसा भरी पंक्तियां हैं। अगर इन कविताओं को कोई उनकी उत्तरकालीन कविताओं के पास रखे तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बाद की कविताओं में गहराई और वजन है जिसका पहले कविताओं में अपेक्षाकृत अभाव है। किसी भी भाषा में ऐसी कविताएं कम ही होंगी जो संयम और मनोरोग की गहनता में पूर्णता अथवा आशंका की बराबरी कर सके। तीव्र और प्रगाढ़ता की अभिवृद्धि के अलावा उनकी उत्तरकालीन कविताओं में जीवन के रहस्यों के प्रति उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिख पड़ता है। प्रचुर समृद्धि और वैचित्र होने पर भी बंगला काव्य में प्रादेशिकता का गुण प्राय दिख पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ अत्यंत सुंदर वैष्णव गीत काव्य भी आंचलिक वातावरण से इतने उत्प्रोत हैं कि उसे छोड़कर उनके लिए ऊपर उठना कठिन है। रविंद्रनाथ का यह एक बहुत बड़ा कृतित्व है कि उन्होंने सार्वभौमिकता और विशिष्टता के एक नए सुर को बांग्ला काव्य में प्रविष्ट कराया। इसलिए उनकी कविताएं जिस प्रकार से बंगाल के किसी आदमी को प्रभावित करती हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका या यूरोप के निवासी को भी। सार्वभौमिकता और विशिष्टता का यह सुर उनके लंबे जीवन में उत्तरोत्तर गहरा होता गया है और उनके अंतिम दिनों की कविताओं में तो यह और भी स्पष्ट दिखता है। मनुष्य के प्रयत्न और प्रचेष्टाएं, उसकी आशाओं और असफलताओं तथा अपनी आकांक्षाओं और नित्य प्रति के कार्य के साथ अपने को एक कर देने के उसके प्रयास भी इन उत्तरकालीन कविताओं में परिलक्षित होते हैं। अपने अंतिम दिनों में रविंद्रनाथ को जो शारीरिक कष्ट भोगने पड़े थे, उनकी अभिव्यक्ति उन कविताओं में इतनी स्पष्टता और तीव्रता से की गई है जिसकी समता शायद ही कहीं देखने को मिले। अवसन्न चेतना गुदली विलाय अथवा ऋण शोध आदि कविताओं में भाषा और व्यक्ति का जो संयम दिख पड़ता है, उससे उनकी युवावस्था के प्रारंभिक काल की रचनाओं के प्राचुर्य और बेफिक्री का बहुत बड़ा अंतर है। परवर्ती दिनों की कविताओं में न केवल संयम और किफायत शारी का भी भाव है, बल्कि उनमें पूर्णता और भरा पूरा होने का भी भाव है। लगता है जैसे संसार और जीवन के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। संसार में दुख और कष्ट है, जीवन मृत्यु की छाया सदा ही पीछे लगी रहती है, लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद जीवन अर्थपूर्ण है और अपने आप में उसका एक महत्व है। ये जीवन सुंदरेर अथवा मधुमय पृथ्वीर धूल आदि कविताओं में मृत्यु की घाटी में जीवन की विजय का भाव है। किसी कवि के मानसिक विकास में प्रकाश डालना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अनुभव के अन्य क्षेत्रों में विकास का एक क्रम होता है। जो कुछ नियमों का अनुसरण करता है, लेकिन जहाँ तक काव्य का प्रश्न है, अंतःप्रेरणा में रहस्यात्मक ढंग से ज्वारभाटा आता रहता है और उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। कभी कभी किसी कवि की उत्कृष्ट कविताएं तो उसकी युवावस्था के प्रारंभिक काल की लिखी हुई होती हैं और प्रौढ़ावस्था की रचनाएं साधारण और पारंपरिक होती हैं। रविंद्रनाथ भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनकी प्रारंभिक काल की कुछ कविताएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं और बाद की कुछ कविताएं ऐसी हैं मानो वे बिना किसी प्रेरणा के लिखी गई हों। जो हो, 80 वर्ष की लंबी उम्र में अपनी अंतःप्रेरणा को उन्होंने जिस प्रकार से जिलाए रखा है, वह उन्हें युग युग तक जीवित रहने वाले महान कवियों की कोटि में रख देता है। जिस उद्दाम, तेज, उद्यम और जीवनी शक्ति से वे ऐसा करने में समर्थ हो सके, उसके पीछे उनके व्यक्तित्व की पूर्णता और अखंडता है। उन विभिन्न सूत्रों को उन्होंने अपने में एकत्र कर लिया था जिनसे आज के भारत की समन्वयात्मक संस्कृति का निर्माण हुआ है। यह गौरव उन्हीं को प्राप्त हो कि जिन्होंने भारत के बहुमुखी जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को लिया और उन्हें आलोकित किया। संस्कृत साहित्य से उन्होंने बहुत कुछ लिया और बंगला के शब्दावली और छंद को समृद्ध किया। वैष्णव गीति काव्यात्मकता और सूफी रहस्य भावना के पूर्ण एकीकरण का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। मध्ययुग की सामंतशाही प्रथा में जिस दरबारी ढंग का विकास हुआ, उसकी व्याख्या करने में उन्होंने पूरी सहानुभूति और कल्पना से काम लिया है। इसी के साथ सर्वसाधारण के जीवन से भी उन्होंने ऐसा बहुत कुछ लिया है जिसका उपयोग पहले नहीं हुआ था। बंगाल के गांवों के भावचित्रों और प्रतीकों का ताना बाना उनकी कविता में बड़े कौशल से बुना गया है। बांग्ला साहित्य में उन्होंने यूरोप के आदर्शों और चिंतन का भी सुंदर सामंजस्य उपस्थित किया है। भलाका संग्रह के बहुत से कविताओं में शक्ति और गति के भाव का समावेश यूरोप की प्रेरणा कहा जा सकता है। मनुष्य जाति ने अति प्राचीन काल में यह समझ लिया था कि सब कुछ क्षण स्थायी है। इसे सभी वस्तुओं में छिपी गति का प्रतीक बनाकर रविंद्रनाथ ने उसमें एक नया अर्थ भर दिया है। थोड़े में प्राचीन भारतीय साहित्य की विरासत, मुगल दरबार के विशिष्ट तौर तरीके, बंगाल के सर्वसाधारण जीवन के सहज सत्य और आधुनिक यूरोप की उद्दाम शक्ति और बौद्धिक सबलता के सम्मिश्रण से रविंद्रनाथ की कविता का प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी युगों और सभी संस्कृतियों के उत्तराधिकारी हैं। इन भिन्न भिन्न सूत्रों और प्रसंगों के संयोग से उनकी कविता को लोच, सार्वभौमिकता और विशेष हृदयग्राहिता प्रदान की है। हुमायूं कबीर, 22 अप्रैल 1957।